نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رمضان مبارک شهر رمضان عظیم مہینہ اس کے بارے میں ہم لوگ اپنی فہم اور عقل کے مطابق قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ فکر کر رہے ہیں ذکر سے پہلے کیونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ پورے دین کو تازہ کرنے کے لیے آیا اور دین جو ہے وہ ایک چیز کا نام نہیں ہے، مختلف اس کے اندر شعبے ہیں دین کے اندر، اور ہر شعبہ جو ہے دین کا وہ بہت ضروری ہے. ہر شعبہ جو دین کا ہے وہ جنت بھی دلاتا ہے اور جہنم میں لے جاتا ہے. ایک ہی چیز پر انسان اکتفا نہیں کر سکتا، کسی ایک ہی چیز کو پکڑ لے وہ سمجھے کہ یہ پورا دین ہے. پھر سلم کا فتن فرمایا قرآن میں کہ مکمل طور پر دین میں آؤ، اور یہ اللہ پاک نے جو رمضان دیا ہے یہ اسی مقصد کے لیے دیا ہے کہ ہر شعبہ جو دین کا ہے اس کو یہ تازہ کر دے انسان کے. اور جب ہم الحمدللہ وہ دین کی حالت ہم تک پہنچے گی کہ بھائی ہمیں اس میں اتنی مہلت ملے گی الحمدللہ 30 دن میں کہ اس کمزوری کو ہم اپنے صحیح کر سکیں. اس کا نام ہے صحیح طریقے سے رمضان گزارنا، کہ جو ہمارے میں نقص نظر آ رہے ہیں، جو ہمارے میں کمزوری ہے اس کو اگنور نہیں کرنا. بس یہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو روزہ کیا رکھا ہے؟ یہ روزہ رکھنا تو یہ ہے کہ دین کو صحیح کرو، جس طرح رمضان بتا رہا ہے ہمیں اس کو صحیح کرو. کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام تو روزہ نہیں ہے. یہ تو ایک مریض جو ہسپتال میں جائے اس نے چھوڑا ہوگا کھانا پینا، وہ کون سا کھانا کھاتا ہوگا؟ اس کو جو منع کر دیا جائے ڈاکٹر کو بھی تو کھانا بند ہے، تو ہم تو صبح شام کا ہی فرق ہے اس کے لیے تو بیچارے کا جب تک صحیح نہیں ہوتا کھانا ہے ہی نہیں اس کے پاس، ہے نا؟ تو یہ تو کوئی چیز نہیں، یہ تو اللہ نے ایک ایڈیشن دی یہ چیز تاکہ اور اندر سے ریفائنڈ ہو جائے انسان، نورانی ہو جائے اور اس پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اس کو ہی دین سمجھ لینا، بات نہیں ہے کہ بھائی یہی روزہ ہو گیا ہم اس کا نام روزہ ہے، یہ بات نہیں ہے ایسی کہ کھجور سے روزہ شروع ہو گیا کھجور پہ ختم ہو گیا بس زندگی ختم. مفہوم سمجھیں روزے کا. ہر چیز کو سب سے بڑی چیز کیا ہے انسان کے دیکھیں دین میں؟ اخلاقیات. اخلاقیات خلق، یہ تو خود آپ پتہ ہی ہے، نبی پاک نے خود فرمایا. تو جو اتنی بڑی چیز ہے اخلاقیات میں، سب سے بڑا درجہ جو اخلاق کا ہے انسان کا، صلح رحمی ہے. بولیں سبحان اللہ. اللہ کی تعریف کے ساتھ آپ کو تازہ کرتا ہوں، خود تم میں بھی تازہ ہو جاتا ہوں تاکہ بات ہم سمجھیں، میں آپ کو سمجھا سکوں. غور کر رہے ہیں میری بات میں؟ تھکے تو ہیں آپ، لیکن سننے آپ کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. پھر کہاں ملیں گے ہم؟ 2 ہفتے تھا ہیں باقی، اللہ کہلوا رہے تو سنتے ہیں بات. اللہ پاک ہمیں سمجھتا فرما دے. پھر یہ اب آپ سوچیں کہ سب سے اہم چیز صلح رحمی ہے. صلح رحمی سب سے افضل چیز کون سی، یہ بھی دیکھیں آپ. سب سے جو جڑ ہے پورے آپ کی صلح رحمی کی، کی پوائنٹ کیا ہے؟ میاں بیوی. بولے سبحان اللہ. میاں بیوی، اگر میاں بیوی نہ ہوتے تو آپ بھی پیدا نہ ہوتے، یہاں ہوتے آپ. میاں بیوی معاشرے کا سب سے اہم جو ہے، پورا معاشرہ دین سارا جو بنتا ہے میاں بیوی سے بنتا ہے. शादी भी रमज़ान की तरह ही, अब समझें शादी सिर्फ इसका मतलब नहीं है कि वो शादी होगी जो बस अपने जो नफसानी शहवात को पूरा करने के लिए, बल्कि नहीं, बल्कि कुरान में तो उसको मना फरमाया है। शादी का मकसद यह है कि आपको ये औरत दी गई है, औरत को ये मर्द इसलिए दिया गया है कि आप इसमें से अल्लाह की दी हुई वो नेमत हासिल करें जो अल्लाह ने दी है, उसको औलाद कहा जाता है। बस इतनी बात है, नफसानी ख्वाहिशात के लिए दिया गया इसको ये रिश्ता रखा गया, मजे मजे के लिए नहीं है। याद रखें बात को, अभी है कुरान की आयत, तब वो नहीं पढ़ते। तो ये बहुत अहम रिश्ता है, सब जो भी बना है इंसान, याद रखें वो माँ की तरबियत से बनता है, माँ की गौस से बनता है। वली कुतुब गौस कयूम ये सब माँ की गौस से बनते हैं, चोर उचके बदमाश सब माँ बाप की उससे निकलते हैं चीजें। अल्लाह सुभान ताला ने माँ की गोद में और बाप की शफकत में, दोनों चीजें, माँ की गोद और बाप की शफकत, वो चीज रखी है कि बच्चे की अर्ग तरबियत माँ की गोद सही करे और बाप की शफकत सही करे। बाप की शफकत जो बिगाड़ती है ना बच्चे, बाप की शफकत जो है जब बिगड़ जाए तो बच्चा फिर बिगड़ जाता है। माँ की मोहब्बत जब गोद बिगड़ जाए तो बच्चा बिगड़ जाता है। अगर तुम कुछ गलत तरफ ले जाएंगे आप, नहीं जी नहीं खैर है कोई नहीं जी, औलाद की गलत मोहब्बत और सही मोहब्बत का अंदाज़ा उस वक्त है कि अगर आपकी औलाद जा रही है सही सीमत पर, कब से, जब से वो पैदा हुआ है, अजान से लेकर, ये नहीं कि जब बड़ा होगा फिर हम सही करेंगे फिर, नहीं नहीं, इस वक्त उसमें शोर भी नहीं होता तो उसमें शोर होता है। मेरी बात समझे आप, जब तक शोर नहीं होता उसमें शोर होता है, ये साइंस साबित करती है, वो ग्रिप करता है हर चीज को, कैच करता है। माँ बाप क्या लड़ाई होती है वो कैच करता है, बच्चा पंगुड़े में कैच करता है, गाली ग्रोज चलती है वो कैच करता है। हम समझते हैं तो बस जी बाद में होगा, तो ये नहीं नहीं, वो तो बन चुका होता है आपके जेर आ गया है तो बन चुका है। जैसे आप हैं, जो आपकी नेचर है, जो आप करेंगे उसके सामने, तभी कहा जाता है भगवान जी कहते हैं जिस वक्त शादी हो जाए तो आदमी बिल्कुल तब्दील हो जाए बस, क्योंकि उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। चंद ही महीनों के बाद अल्लाह ताला उसको एक चीज देने वाला है, बस वो गया काम से अगर उसने अपने रुख को नहीं बदला। शादी से पहले था जो था या थी जो थी, लेकिन शादी के बाद जो है अगर वो सही नहीं हुआ तो अपने खुद खराब नहीं हो रहा, बल्कि क्या है कि वो आने वाली पूरी जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, और जिसका हिसाब अल्लाह को देना होता है। अहमियत समझ गया कितनी बड़ी अहमियत है इसकी, मियाँ बीवी का रिश्ता, ये अगर रिश्ता मजबूत हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह बरकत डाल दे, इसके अंदर काम गुजर जाए सारा, तो सुभान अल्लाह पूरा सुलह रहमी का मामला उसके अंदर आ जाता है, पहुंच जाता है सर, माशरा बन जाता है, माशरा पूरा बन जाता है। याद रखें सिर्फ घर ही नहीं बनता, कैसे कि जो तरबियत बच्ची लेकर हासिल करेगी माँ की गोद से, जब वो अपने घर में जाएगी तो फिर वही चीज वहां वो करेगी अपने खामिद के साथ। वो घर होता है जब बच्ची निकलती है तो उसका घर एक सैंपल होता है उसी घर का जिस घर से बच्ची आई होती है, फिर वो अपने बच्चों की तरबियत वैसी करती है जैसे बाप की शफकत की और माँ की गोद नहीं की उसकी, बहुत बड़ा असर पड़ता है इसका, और ट्रांसप्लांट होता है उसके अंदर चीज बच्चे के अंदर, वादा चली जाती है। शायद ख्वाहिश तो सबकी होती है, बस जी मैं इसको बच्चा अब हाफिज बनाऊंगा, मैं इसको फलां करूंगा, मैं इस लड़की को ये करूंगा फलां करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने आप को तब्दील करना पड़ता है, अपने आप को सही करना पड़ता है, और जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़े हों तो वो तो बर्बाद अपने हैं, लेकिन क्या है कि बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, वो जहनी मरीज हो जाते हैं, वो दीन छोड़ देते हैं, अल्लाह से मुनहरिफ हो जाते हैं, सारा जो कसूर जाता है किस पर जाता है, उन उस कपल पर जाता है। उसका जवाब जब वो बच्चा पेश होगा अल्लाह के सामने, तू वो ऐसी गंदी बातें करता था, वो कह जी मैं क्या करूँ, मेरे माँ बाप ने ऐसे काम मुझे सिखाए थे, उन्हें मेरी तरबियत नहीं की थी, सारा गुनाह फिर उन पर जाता है। आप कहेंगे रमज़ान से इसके तारों कोई बात करें रमज़ान की, जी रमज़ान में इतने स्वभाव होते हैं, अफ्तारी का ही होता है, लेकिन मेरा अंदाज ज़रा मुख्तलिफ होता है। ये तो सब कुछ पता है, अफ्तार में इतना स्वभाव मिलता है और फरिश्ते उतरते हैं, ये होता है असल फरिश्ता। मैं बता रहा हूँ जो रमज़ान में, रमज़ान के रमज़ान का इस मियाँ बीवी से क्या ताल्लुक है, मैं आज वो बता रहा हूँ। मैं पढ़ रहा था सूरह बकरा, हाँ सूरह बकरा में मैं पहुँचा, इस आयत पे पहुँचा, मैं रुक गया, ये आज की बात है, जब जुमा पढ़ गया मैं रुक गया, मैं क्या ये तो बड़ी कीमती आयत है, रमज़ान के ज़मरे में आ रही है, इस पर तो हमने सोचे नहीं कि रमज़ान पर। मैं छोड़ के तफक्कुर किया, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। तो आयत भी लंबी है, पढ़ूंगा, उसको गलती हो जाए तो मुझे सही कर दें आप, मैं हाफिज तो नहीं हूं ना, पसंद आई है शायद सही पढ़ दें, याद हो गई होता नहीं। तो आप रमजान से इसका क्या ताल्लुक मियाँ बीवी, मैं आपको किससे सुना रहा हूँ ये सारे, अगर कोई ताल्लुक तो बनता होगा ना इससे, तो ये बात कर रहा हूँ। इतना कीमती रिश्ता है ये कि अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहे हैं सोचें आप, उहल्लु हल्लु लकुम लैलतुस्सियाम, ये शुरू होती है आयत कि मैंने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, कब, सुभान अल्लाह, रमजान की रातों के अंदर, हल्लु लकुम, हर चीज जो अल्लाह ताला ने रोकी हुई थी, अब उस एक चीज को अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, स्पेशल बयान कर रहे हैं उसके बारे में, हल्लु लकुम लैलतुस्सियाम, इतनी कीमती रात के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं एक चीज तुम पे हलाल कर रहा हूं, सुने क्या चीज हलाल है, ऐसी कितनी अहमियत होगी इस चीज को लगा रहा है, नहीं ये हलाल कर, तू ये कर सकता है, यकीन उसकी इतनी अहमियत है उस चीज की जिसको अल्लाह ताला हलाल कर रहे हैं कि इसके पीछे की बड़ी हिस्ट्री है, वो क्या चीज हो सकती है जो हलाल हो रही है, और वो भी रात हो किस कौन की, रमजानों की रात, जिसमें आए ललतुल कद्र, हर घड़ी कीमती, हर लम्हा खास पे रमजान की रातें, सुभानअल्लाह, इसकी क्या बातें, अजीब ही चीज है, तो अल्लाह के हलाल कर रहे हैं, सुभानअल्लाह, हल्लुल्लाह। फरमाते हैं कि मैं तुम्हें जो बयान कर रहा हूं, रसूल कहते हैं, रसूल इसमें है लफ्ज, इल्ला निसाअकुम, कि तुम पे हलाल कर रहा हूं कि तुम अपनी बीवियों के साथ बेहजाब हो जाओ, चले जाओ उनके पास, अल्लाह, इबादत की रातें हैं, कितनी कीमती रातें हैं, अल्लाह तुम ये कहते हैं खबरदार ना जाओ, ऐसे काम नहीं करना, तुम्हें हर वक्त सल्ले में बैठना है, लेकिन क्या कहा जा रहा है, तुम अपनी बीवी के पास जाओ, अल्लाह ने साहब को हलाल है तुम्हारे लिए चीज, तो अल्लाह हलाल कर रहे थे, उसने हिकमत अल्लाह ताला ने क्या रखी, कि ये इतना बड़ा रिश्ता है कि इसकी मजबूती के लिए अल्लाह ताला ने कि 30 दिन तुम उससे अलग ना रहो, और अलग होने के बाद कोई ऐसा फितना पैदा ना हो जाए कि इस रिश्ते में कमी आ जाए, तुम्हारी मोहब्बत में कमी आ जाए, ये मोहब्बत इतनी ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि इसको इन रातों में भी आपने कायम रखना है, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक रिश्ता है, इसके पीछे बड़े शैतान के बड़े बड़े वार होते हैं। सही हदीस है, जाबर रवायत फरमाते हैं, हदीस को मुश्कात में है, कि शैतान जो पूरे काम सब कुछ कराता है इंसान के साथ, मुकम्मल उस बदमाशी वो कराते हैं ना शैतान, तो वो क्या करता है कि अपना तख्त बिछाता है समंदर पर, जब स्टार्ट करता है काम, और तमाम चेलों को जो बहुत ही ट्रेंड चेले उनको बुलाता है कि जाओ और काम करके आओ, मुझे रिपोर्ट दो कि आज तुमने क्या फितना किया मुल्क के अंदर, शैतान फैल जाते हैं, सारी दुनिया में फितने मचते हैं, दुनिया के अंदर कत्ल हो रहे हैं, गलत हो रही हैं, शराब सना जो कुछ चलता है, कहते शाम को रिपोर्ट दो मुझे, अल्लाह के फरमाते हैं कि शाम को चेले आते हैं तो कहता जो भी बता रहे, कहता तुमने कुछ नहीं किया, कि मैंने कत्ल कराया, मैंने फलां कराया, मैंने ये कराया, कहता कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, एक बलूंगड़ा आता है ज़बरदस्त, कहते जी मैंने भी कुछ किया, तुमने क्या किया, कहते जी मैंने मियां बीवी को छोड़े ही नहीं, ऐसा पीछे पड़ गया उनके कि जब तक उन्होंने तलाक नहीं दे दी मैंने को छोड़े ही नहीं। तो कहता अपने तख्त से उठता है, ये आके नबी सुन सुना पाते हैं, तख्त से उठता है उसको अपने सीने से लगाता है कि असल काम तो तू कर गया है, तूने तो बड़ा ऊंचा काम कर दिया, इतना तेरा कर देना यह है कि एक तूने पूरी नस्लों को बर्बाद कर दिया उसकी और तूने तबाह कर दिया तलाक दिलाने के बाद। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि सबसे खतरनाक चीज जो है इंसान के लिए, तो अल्लाह ताला ने उसको इतनी मोहलत भी नहीं दी 30 दिन के अंदर कि ये इतने भी अलग रहे अपने आप के साथ और उसमें कोई फितना पैदा हो जाए, कोई ऐसी चीज पैदा हो जाए, तो उनको क्लोज रखा है। रफास अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल वसक तुम, ताकि मोहब्बत बरकरार रहे इनके मियां बीवी के अंदर और कोई फितना पैदा ना हो। तो एक चीज इशारा मिला कि हर हालत में इस रिश्ते को कायम करना, हर हालत में इस मियां बीवी के रिश्ते को, यानी कि ये टूटने ना पाए, एक दफा निकाह में औरत आ गई मर्द आ गया, इसको कायम करने के लिए दोनों तरफ से जहद करनी चाहिए और किसी भी फितने में इंसान को इसके अंदर पड़ना जो है वो बहुत बड़ी बर्बादी है। रमजान ये पैगाम दे रहा है। और फिर आगे क्या हुआ इस आदमी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हन्ना लिबास लकुम, कि वो तुम्हारे लिए लिबास हैं, वअंतुम लिबास लहुन्ना, यानी औरत मर्द के लिए लिबास है और मर्द औरत के लिए लिबास है। अल्लाह ताला ने मिसाल फरमाई, अल्लाह लिबास से क्या मतलब, यहां हुसैन देखें क्या पहली बात करते हैं, क्या आपने लिबास पहना हुआ है, मैंने लिबास पहना हुआ है। मिसाल के तौर पर एक आदमी कमीज उतारता है तो जिसम में कोई ना कोई चीज नजरानी शुरू होती है आदमी की, कि फोड़ा होगा, फुंसी का दाग होगा, ऑपरेशन होता है, किसी के पेट में चाकू लगा होता है, किसी की बदसूरती होती है। तो लिबास क्या है, यह इंसान के ऐबों को छुपाता है। लिबास की खासियत यह है कि इंसान के ऐबों को, और भी खासियत है, खूबसूरत भी बनाता है, हसीन भी दिखाता है, लेकिन लिबास सबसे पहली चीज यह है कि इंसान के ऐबों को छुपाता है और हया पैदा करता है, हया आती है, शर्म सिखाता है। जैसे इंसान लिबास उतरता है उसकी शर्म निकल जाती है, बेशर्म होने के बाद सबसे पहले लिबास ही उतरता है उसका। तो लिबास की मिसाल दिए हुन्ना लिबास की, ये तुम्हारी बीवी जो है ये तुम्हारे लिबास है और मर्द के लिए बीवी के लिए मर्द लिबास है, यानी तुम इतने जुड़े हो एक दूसरे के साथ कि तुम एक दूसरे के ऐबों को छुपाने वाले हो। सुभान अल्लाह। तो तुम भी क्या कर रहे हैं कुरान की, खबरदार ऐसा मत करना कि तुम्हारे अंदर तेरी खामिन में कोई ऐब है तो तू दुनिया में बताती फिरे, देखो जी मुझे ये नहीं, देखो जी मुझे फलानी, देखो जी फलानी करता, बल्कि क्या है कि उस ऐब को छुपाना है, जैसे लिबास उस ऐब को छुपाता है। और इसी तरह हामिद ने अपनी बीवी के बातें हैं अगर उनको छुपाना है, उनको जहर नहीं करना है, उनको नहीं बताना लोगों को, लिबास की तरह उसको छुपा लेना है। उनना लिबास, वो तुम्हारा लिबास है। दो चीजें पर बताएं, एक तो रिश्ते को कायम करना, टूटने दें, और दूसरा नाम क्या है, ये लोगों के अंदर अपनी बातों को बयान करना, कि यानी शिकायत करना, शिकवे करना खामिदों को या बीवियों का, बीवी के खामिद को शिकवे करना, हत्तुल मकान उसको घर के अंदर ही महदूद रख के अपने साथ रखना, ये दो चीज़ें हैं। लेकिन दो चीज़ें जो हैं ये इतनी बड़ी इबादत है, इतना बड़ा मुजाहिदा है कि किसी इबादत में आपको ये मुजाहिदा नजर नहीं आएगा जी। यह काम आसान बात नहीं है, सारी इबादत को आप एक तरफ कर लें सब इंसान कर सकता है, लेकिन एक ऐसे खामिद के साथ जो उसके हक ना देता हो, जो उसको तंग करता हो, जो उसको गाली निकालता हो, जो उसको परेशान करता हो, उस बीवी का उसके साथ गुजारा करना इस हालत में, जैसे कुरान कहता है कि तूने उसके ऐबों को बताना नहीं है और तूने सब्र करना है, सब्र के साथ अपनी औलाद के लिए तुम्हें इक्तफा के साथ उसके साथ गुजारना है, जल्दी नहीं करनी, तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने जो इनाम रखे हैं वो रमजान होता है, बहुत ऊंचे बड़े बड़े इनाम आते हैं उसके लिए। प्रैक्टिस कराया रमजान, रमजान के अंदर ही प्रैक्टिस करो अलहमदिल्ला। बहुत बड़े बड़े इनाम है ऐसी एक औरत के लिए, इससे खाविंद के लिए क्या हो, अल्लाह ताला की तरफ से ये देखें, ये रिश्ते अल्लाह की तरफ से आते हैं। आप सिलेक्ट करते हैं, इस्तहारा करते हैं, सब कुछ करते हैं, शादी कर ली, लेकिन उसके बाद ही पता नहीं होता इंसान का, वो एक अल्लाह ने किस्मत लिख दी, अब आपने उसको टाई बन गई, अब चलता है दीन इस तरह कि ये दीन इतना मजबूत ये रिश्ता रख दिया है आपके लिए इसमें कि अब छोटी छोटी बात में नहीं है, माँ को बुला लिया उसने, अपने बाप को बुला लिया, उसने टेलीफोन को शिकायत कर दी, उसने उसको उसकी शिकायत कर दी, दुनिया में शिकायतें होती फिर रही हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ये तो बे इंतहा बुरी बातें हैं, ये दीन नहीं है। फिर नमाजें पढ़ रहे हैं, फिर हज भी कर रहे हैं और जनाब अल्लाह सब कुछ हो रहा है, ये तो दीन का एक बड़ा अहम शुबा खत्म किए हो, तुम ये क्या करते फिर रहे तुम, ये कौन सी नमाजें हैं, कौन से हज हैं, कौन से रोजे हैं, कौन से रमजान हैं। तो असल जी जहाँ से दीन निकलना था, जिस जनरेशन निकलनी थी, तुमने तो उसको ही बर्बाद किया हुआ। अगर कोई आदमी अल्हम्दुलिल्लाह इस मुजाहिदे को बर्दाश्त कर जाता है जिंदगी के अंदर याद रखें, तो बहुत बड़ा इनाम अल्लाह पाक ने रखा है। क्या इनाम रखा है, सही बुखारी की हदीस से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, देखिए इनाम कितना बड़ा रखा है, खैरकुम खैरुम अहलिही वना खैरुम अहलिही, ये हदीस है सही बुखारी की हदीस। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने अहले खाने के साथ बेहतर है, सुभानअल्लाह। इबादत में आ नहीं रखा, ये अखलाक में आ रखा है कि सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने अहले अहल के साथ बेहतर है, अखलाक के साथ सलूक है उसका, बर्दाश्त है, बर्दाश्त कर रहा है कि इस रिश्ते को मैं निभाना है, चलाना है, इसको लेके जाना है, मैंने बच्चों की तरबियत करना है, मैंने एंड तक इसको पहुंचाना है इस रिश्ते को, छोटी छोटी बात में इसको तोड़ना नहीं है, बेशक छोटी बात उसके लिए ना हो, एक बहुत बड़ा मिशन इंसान को दे दिया जाता है कि इस औरत के साथ तूने अब निभा करना है, हर हालत में तुझे पसंद हो ना हो, तेरे बात माने ना माने तुझे दे, तो अब तूने इसके साथ इसलिए निभा करना है कि अल्लाह सुबहान तआला ने तुझे एक टारगेट दे दिया, चल भाई तू कर दो, अब तूने उसको राजी भी करना है और अल्लाह की इबादत भी करनी है, उसको खुश भी करना है और हज भी करना है, लेकिन सबसे पहले अहल को देखना है तूने हज करने से पहले कि तेरी बीवी राजी है तुझसे, तेरा घर खुश है तुझसे। ये इतना आसान नहीं है हमारे यहाँ तलाक दे देना, सब छोड़ देना, गो अल्लाह सुबहाना तला ने इसको जायज किया है, लेकिन हदीस में आता है कि जायज चीजों में सबसे जो गैर पसंद चीज है वो ये तलाक देना है, छोड़ देना है। वो तो एक रास्ता रखता है जब बहुत ही हालात नागरेज हो जाते हैं इंसान के, इस हद तक पहुंच जाते हैं जब इस हद तक बिल्कुल अब मतलब कोई सिलसिले नजर नहीं आता, पैर ही नहीं उसके, बहुत ही एंड पहुंच जाते हैं, फिर जाके आदमी कदम उठाते हैं नागरेज, वरना तो इसको तो निभाना ऐसा है कि इंसान अपने हर कदम पे जन्नतें बना रहा है, हर कदम पे कई कई हजों के सवाब ले रहा है, कई कई रमजानों के सवाब ले रहा है, कई कई रोजों के सवाब ले रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहां तो बड़े बड़े अल्लाह वालों की मिसालें हैं, इनके घर में आप क्या मालूम अल्हम्दुलिल्लाह। तो असल बात वो ये करते हैं सुभानअल्लाह, असल अल्लाह वालों की इबादत सुलह रहमी होती है, सलूक होता है। अल्लाह के नबी ने देखिए अपने बच्चों की तरबियत के बारे में कितनी बड़ी बात फरमाई है कि जब माँ बाप मिलते हैं और मिलने के बाद अपने बच्चों की तरबियत करते हैं तो इस सुलह रहमी का, इस रिश्ते का सवाब देखें आप कितना बड़ा, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मैं कहता हूँ किसी इबादत से भी मिलना बड़ा मुश्किल नजर आता है, कितना बड़ा अजर है। आप सोचें कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इरशाद हदीस है कि कोई शख्स अगर दो बेटियों की तरबियत करता है और तरबियत करता है उनकी अच्छी तरीके से हुस्न सुलूक साथ तरबियत करता है तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे मेरी ये दो उंगली हैं। अल्लाह दो का कहे, और अगर दो से ज्यादा हो, तीन हो, तो सुभान अल्लाह, तो और भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला का इनाम उसमें रखा गया। जिस कदर खास नाम किसका लिया है, औलाद में से किसको सेलेक्ट किया पाक ने कि औरत नाजुक होती है, अच्छा उसके लिए तरबियत का क्या है, बच्चे का नहीं का, बेटे का नहीं का, उसमें क्या है, इसमें क्या वजह है, आप सोचें। इसलिए कि औरत की तरबियत खास लेकर इसलिए की है कि इसने घर आइंदा दूसरे घर में जाके भी इसने ये काम करना है, और ये इतनी कीमती चीज है लड़की जिससे हम डरते हैं, जिससे हम डरते हैं। कभी लड़की पैदा हो तो मिठाई बहुत कम आती है, लड़का हो तो अभी पैदा भी नहीं होता तो मिठाई के डब्बे आ जाते हैं। अलहमदा अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन ये क्या बात है जिसको अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी के देखें आप, और किससे चली है, हमारे हजरत की तीन ही लड़कियां थी माशाल्लाह, बस सारी औलाद अल्लाह को प्यारी हो गई थी, तीन औलाद थी इन्हीं से हजरत के पास चली है, और इसी सुनो तो अल्लाह ताला ने मुझे भी तीन दी अल्लाह के पास। ये देखें आपकी दो अगर लड़की के तो तीन लड़की आप तरबियत कर रहे हैं उनकी, उनकी आप सही तरबियत कर रहे हैं, और तरबियत करना का आसान बात है। आज देखें कैसे कैसा जमाना गुजरता जाता है इंसान का, ये सब तरबियत पे होता है इंसान के, अपनी ख्वाहिशात को खत्म करना पड़ता है, अपने चीजों को खत्म करना पड़ता है। तरबियत का मतलब ये नहीं कि जो चाहे उसको दे दो, जो मांग रही तरबियत हो रही है, नहीं नहीं, तरबियत वो जो ऐसी तरबियत के जाने के बाद वो भी ऐसी औलादें पैदा करे कि जो अल्लाह और रसूल की मानने वाली इताअत करने वाली पैदा हो, अल्लाह के वली और गौस पैदा हो, और तारीख लेके निकले कि अल्लाह ताला मैंने एक काम करना है कि जो तू मुझे औलाद देगी मैंने उसको तेरा वली बना। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसे औरतें मौजूद हैं कि जिस वक्त बच्चा होता है, बच्चा होने से पहले अपने आप को तब्दील कर देती हैं, और उनका टारगेट बन जाता है कि मैंने इसको तेरे हबीब का गुलाम बनाना है, इसको सुन्नतों पर चलाना है। उनकी मोहब्बतों का, उनका तकाजा, उनकी ख्वाहिशात, उनकी खेलने की चीजें, उनका लिबास पैदा होते ही वो उसके साथ वैसी ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। है आज भी, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आज भी ऐसी औरतें मौजूद हैं इसी जमाने में, इसी मुल्क के अंदर आपको नजर आएंगी। फर्क है क्यों, क्या है कि हम दीन को सिर्फ मस्जिद तक ही दीन समझें, लेकिन किसी फकीरों ने अल्लाह वालों की सोबत में बैठी है तो उनको दीन ये नहीं समझ आया बल्कि उनको दीन पूरा शोबे समझ आए, उनको किसी ने सब कुछ बताया है। अल्लाह वालों की महफिल में सिर्फ एक ही चीज नहीं बताई जाती, सब शवों को उजागर किया जाता है ताकि कंप्लीट मजहब लेके इंसान कोशिश करे कि अल्लाह ताला हर शोबे के अंदर मुझे कामयाब करता चला जाए। तो रमजान आज हमें ये बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये भी मामूली चीज नहीं, ये बड़ा ऊंचा रिश्ता है, इस रिश्ते को निभाना जो है ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। कोई औरत अगर कर ली इसलिए कि मैं अल्लाह की दी इस औलाद को मैं परवरिश करूंगी, इसको मैं हाफिज बनाऊंगी, इसको मैं कारी बनाऊंगी, इसको अल्लाह वाला बनाऊंगी, इसके तो भाई उसके रिजल्ट निकलते हैं, लेकिन उसके लिए फिर अपने आप को बहुत बहुत मुजाहिदात के अंदर डालना पड़ता है। भाई भूख नंग गालियां मुकाई, यानी अल्लाह इनके लिए जो इनाम जो रखा है, छोटा इनाम तो नहीं है, जो बात कही गई वैसी मिलेगा, अल्लाह के नबी सम की मोहरकत मिलेगी इतनी कि दो उंगली के बराबर, वो क्या होगी हमें नहीं पता। कितना बड़ा मौका मुझे बताया इंसान को मिल रहा है इस इबादत के लिए कि सब कुछ कुर्बान करते रहने। तो मेरे भाई ये आयत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कीमती आयत है, रमजान की रंग में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कि इजाजत जो दी है वो शहवात को पूरा करने के लिए दी जा रही है, बल्कि इसलिए कि रिश्ता रमजान के अंदर ही बाबरकत रहे। और खास तौर पर याद रखें कि रमजान के अंदर ही फसाद बहुत मचाता है मियां बीवी के अंदर, नफ्स बड़ा मचता है, खाने पे मचता है, सहरी पे होता है कि तूने ये सहरी क्यों नहीं बनाई, क्योंकि आखिर में तो बहुत पेट खाली होता है और नफ्स का गलबा होता है, तो घरों के अंदर लड़ाई शुरू होती है इंसान के अंदर। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह रमजान में पहले ही बता दिए कि इस मामले में तुम्हें सख्त कंट्रोल चाहिए, सबसे बेहतरीन इंसान वो होगा आखिरत के अंदर जिसने अपने औलाद को गवाही देगी कि मेरा बाप बहुत अच्छा था, उसने मेरे साथ बड़ी तरबियत में कोशिश की है, मुझे दीन की तरफ चलाया, उसने मुझे बचाया और उसने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, मेरे खून में उसने कोई हराम का लुकमा ना जाने दिया, किसी लुकमे ना जाने के लिए हराम के लिए उसने एक एक पाई ऐसी रखी कि मैं अपने बच्चों को कितनी मुझे मेहनत करनी पड़े लेकिन एक हराम की मैं पाई उसके अंदर नहीं जाने दूंगा, ताकि उस खून से जो मैं उसकी तरबियत करूं तो हर खून का खतरा अल्लाह को याद करने का लुत्फ ले उससे। बेसिक तो यहां से होता है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तरबियत की एक बाप की, जिस तरह माँ की जिम्मेदारी है ना
کہ وہ گود کے اندر اس کو اللہ کی محبت کو پیدا فرمائے اور اس کی باتوں صحیح کرے. اس طرح مرد کی ذمہ داری ہے. یہ سب سارا کچھ دین بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ انسان کی خوراک سے بنتا ہے. یہ بھی رمضان کی انشاءاللہ ٹاپک آئے گا, یہ رمضان اس کی ٹریننگ کرائے گا ہمیں, اس کی بات آئے گی کہ پورا کچھ جو کچھ بھی ہے آپ یہ دیکھیں بنتا ہے انسان کا عقل حلال سے بنتا ہے. اگر حلال رزق ہے تو پھر وہ دیکھ لیں آپ کا دین ہے بنے گا, پھر بھی حرام کے ساتھ بھی حافظ بن جائے گا, حرام کے ساتھ بھی عالم بن جائے گا, حرام کے ساتھ بھی وہ مفتی بن جائے گا, حرام کے ساتھ بھی وہ شیخ بن جائے گا, پیر بن جائے گا. شیخ تو کیا بننا, پیر بن جائے گا. وہ سب جادوگر ہوں گے جتنے بھی ہوں گے شعبے کے اندر. ہر شعبے میں جو پودا لگے گا وہ ایسا پودا ہوگا جیسے کہ ایک کمزور درخت کے اندر سے پھل نکل رہا ہو. آپ دیکھیں پھل مختلف ہوتا ہے, بعض آم ایسے ہوتا ہے اندر ہوتا ہی گودے نہیں اس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ وہ جو درخت ہوتا ہے جس میں لگ رہا ہے اس میں اتنی جان ہی نہیں ہوتی, اس میں کھاد ہی نہیں ہوتی, پانی نہیں ہوتا, لیکن اس نے آم تو دینے دینا ہے. اسی طرح کوئی حافظ بن گیا, قاری بن گیا, کوئی شیخ بن گیا, کوئی پیر بن گیا, کوئی فلاں بن گیا, لیکن جس کے حرام کے ساتھ بنا ہے تو پھر فتنے پیدا کرتا ہے وہ, اور سارا گناہ اس باپ پہ جاتا ہے کہ تم نے اس کو عالمی بنانے سے پہلے سوچا نہیں کہ اس کی تو اس کے اندر پہلے رزق حلال ڈالتا, تو نے حرام کیوں کھلایا اس کو. تو سمجھدار باپ جو کسی تربیت میں ہوتے ہیں پیر کی, کسی سے اللہ والے کی پیر ہوتے ہیں, تو جب ان کے اولاد پیدا ہوتے ہیں تو قسم کھا لیتے ہیں کہ آج سے حرام کا دروازہ بند. بھوک چلے گی, پھر ادھر بیوی تیاری ہوتی ہے, اگر تو اس اولاد کے لیے کر رہا ہے تو آج سے تیری بیوی تجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گی, نہ سونے کی, نہ چاندی کی, نہ کپڑوں کی, نہ سرخی کی, نہ پاؤڈر کی. ہم بھوکے رہیں گے لیکن اس اولاد کو تو حلال کھلا اور میری گود سے انشاءاللہ اللہ کل اس کی آوازیں نکلیں گی اس کی. آج سمجھ آ رہی ہے میری؟ اور ہم شکایت کرتے ہیں پھر اٹھ کے اس کی شکایت, اس کی شکایت, دین کے سکسے کو ویسے ہی پکڑے. جب پودا لگاتا ہے نا مالی کوئی تو سب سے پہلے زمین سے چلتا ہے. جس وقت آپ بیاہ کے لا رہے ہیں کسی لڑکی کو تو شہوات کے لیے نہیں لا رہے کہ اپنی شہوات کو پوری کریں گے, بس لڑکی آ گئی مزے کریں, لڑکا مزے. وہ تو ایک حد تک بتایا گیا انسان کو اصل مقصد. قرآن جو بتاتا ہے اس سے تم نے تمہیں ایک بہت بڑی عبادت دی جا رہی ہے, مکہ اور مدینہ دونوں تمہارے گھر کے اندر موجود ہو گئے ہیں, جنت اور دوزخ دونوں تیرے گھر کے اندر آ چکی ہے. اور یہ تو ایسی کہ قیامت تک تیری جنریشن چلے گی اس میں. نہ مجھے نہ رزق کا پتہ, نہ باپ حرام رزق سے بچاتا ہے, وہ دوسری طرف لے کے جاتا ہے بچوں کو, ان کو اونچا کرو کہ کوئی اس کو جھوٹا نہ کہے, اس کے لیے فلاں کرو, اس کے لیے فلاں کرو, کیونکہ یہ نہ ہو کہ میری بیچتے ہو اس کا بیٹا ہے, اتنے گندے حالات میں اس کے اتنے اچھے کپڑے نہیں ہیں, اس نے یہ نہیں پڑھا بھی, نہیں نہیں اتنا جمع کر کے دو, اتنے مکانات بنا کے دو. وہ بندے کے پتروں کو لے کے گیا آج تک مکان, اور وہی بیٹے تھے تجھے مکان دیں گے, تجھے پانی بھی نہیں پلاتا ہو, بیٹا بھی نہ بیٹی جو حرام سے پلے ہوتے, وہاں گھر میں راحت آ ہی نہیں سکتی. نہیں جی وہ تو حافظ ہے, وہ تو فلاں ہے, یہ تو فلاں ہے. جو حافظ ہے تو اس کی جو آگے حافظہ پیدا ہوں گی وہ بھی حرام ہوں گی سر, وہ بھی فتنے پیدا کریں گے. جو ممبروں کو بیٹھ کے فتنے کرتے ہیں نا, ممبر پہ بیٹھ کے فتنے کرتے ہیں جو لوگ, اور جو پیر لوگوں کو غلط باتیں بتا رہے ہیں, حرام اور بدعات پیدا کرتے ہیں پیر, اور جو ممبروں پہ بیٹھ کے حرام کام کرتے ہیں لوگ, وہی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو بنایا اس لیے گیا کہ ان کے اندر حلال رزق نہیں تھا. حلال رزق ہو اور یہ ممبر ہو, سبحان اللہ, وہاں سے تو ایسا نکلتا ہے کہ اس کی ایک زبان سے لکھے نصیحت ہزاروں لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیتی ہے. ایسا شیخ نکلتا ہے کہ ایک توجہ, اس کی ایک توجہ لاکھوں کا مجمع کے دلوں کو صاف کر دیتی ہے. یہ کوئی کم چیز ہے مصلی امام؟ یہ قرآن کم چیز ہے؟ علم کم چیز ہے؟ کم چیز ہے؟ سو آدمی کانپ جاتا ہے کہ سینے کے اندر قرآن ہوتا ہے, اور ایسی ایسی حرکتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی توبہ توبہ. رمضان میں چھوٹ افراد, جھگڑے, لڑائیاں, ایسی ایسی باتیں کہ انسان ان کے اندر قرآن ہے, ان کے اندر علم ہے, ایسی ایسی نافرمانی ہے, ایسی ایسی غلط ماں باپ کے خلاف بے عزتی ہیں, ماں کو گالی ہیں, ہاتھ سینے میں قرآن ہے, ماں کو گالی دیتے ہیں کھڑے ہو کے, باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, علم دیا ہوا ہے. کیوں؟ کہ رزق کے حلال کے ساتھ یہ پودا چڑھا نہیں, یہ استغفر اللہ علم کی غلطی نہیں ہے, قرآن کی غلطی نہیں ہے, بلکہ قرآن کو غلط جگہ پہ رکھ دیا تم نے, غلط ریل پہ رکھ دیا ہے, نا پاک جگہ پہ قرآن کو اتار دیا ہے, اس کی الگ سزا ملے گی. ذرا آج کا مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں, میں قرآن پڑھا تھا صحیح پڑھا ہے بھائی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں تو وہیں رک کے میں نے کہا یہ بات کرتا ہوں، ہے تو حقیقت نہیں، کیوں رمضان ہمیں نے دیا ہے، اگر اس رمضان پہ تفکر کیا، تم نے آج بھی توبہ کر لیا، سوچیا اپنے راستے کو صحیح کرنے کے لیے، تو رمضان کی برکت سے پورا سال پھر تمہارا صحیح ہو جائے گا. آج ہم بچوں کو گالی دیتے ہیں، لڑتے ہیں، پوچھتے ہیں میں نے تو عالم بنایا تھا، میں تینوں ہے کتنا سی، میں تیرے واسطے وہ کتنا. آج ایک فکر ہوتا ہے ہمارا مردوں کا، میں تیرے واسطے یہ کیا، میں نے تیرے واسطے یہ کیا، اور تو نے اس کے واسطے کچھ نہیں کیا. بندے تو صرف ایک کام کر دیتا اس کے لیے، ایک کام تو اس کو حرام کا لقمہ نہ دیتا، اس کی ناجائز خواہش کا پہ نہ جاتا، حرام کا لقمہ نہ دیتا، حلال ہوتا. اللہ کی قسم، اللہ کے قانون کوئی بدل نہیں سکتا، کبھی ہو سکتا نہیں ہے کہ جامن کے درخت سے آپ سیب توڑ لیں، ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. حرام کے ساتھ آپ نے پودا لگایا تو اس کے ساتھ کبھی رنگ نہیں آئے گا، چاہے کتنے قرآن پڑھا دیں، کتنے آپ ان کو قرآن سکھا دیں، کتنے آپ ان کو کچھ بھی کر دیں، ہو نہیں سکتا. اس کے لیے پہلے انسان کو خود مارنا پڑتا ہے اس درخت کے لیے، پھل لینے کے لیے خود بھوکا رہنا پڑتا ہے اپنے رزق، کیونکہ میرا بیٹا میں اس کو حرام کھاؤں گا تو میں اس کو حلال کھلانا ہے، تو پہلے سب سے پہلے تو مجھے بھوکا رہنا پڑے گا کہ مجھے نیچے جا کے کھانا کھانا پڑے گا. ایسی تربیتیں تھوڑی ہوتی ہیں کہ گھروں سے نکل گئے ہیں، دس دس سال پتہ نہیں بیوی کدھر ہے، بچے کون پال رہے، چاچا پال رہے، ماما پال رہے، فلاں پال رہے، اور دوسرے کی تربیت کر سکتے؟ دیا تجھے بیٹا ہے اور تربیت دوسرے لوگ کریں، اس کا جواب کون دے گا؟ باتیں تلخ ہیں، بے شک کچھ نہ ملتا کھانے کو جس جگہ تو رہتا ہے، وہاں بیٹھ کے پہلے بیٹی کے بچوں کی تربیت کرتا، یہ تیرا حق تھا. ہو سکتا اس کے اندر بھی حلال نہ گیا ہو تبھی ایسے کام کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ ایک چیز مجھے دی گئی ہو اور میں اس کی تربیت دوسروں کو سپرد کر دوں، کس طرح حلال ہو سکتے ہیں معاملہ؟ ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں معاشرے میں. بس ہمارے سامنے ایک ہم نے شوبا پکڑا ہے، حج کراؤ، وہ عمرے کراؤ، بس مسجد رمضان ہے تو روزے رکھ لو، بس یہ کر لو، یہ کہاں گیا دین آپ کا سارا؟ نہ گھر کا پتہ ہی نہیں ہے، بیوی کا پتہ ہی نہیں ہے. تو آج قرآن بتاتا ہے الحمد اس میں اللہ کم، ہم نے حلال کیا تم پر راتوں کو لیا اور تم جانا، مزے کے لیے نہیں، لیکن کس اس میں فلسفہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تمہارا رشتہ اور مضبوط ہو اور محبت اب آپس میں تمہارے پیدا ہو، تاکہ تمہارے پیدا ہونے والی جنریشن ہے اس میں اندر اور بھی صلاحیت آئے، تم ان کی تربیت اور بھی اچھی طریقے سے کر سکو. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب رمضان کی پہلی پہلی باتوں پہ مستقل عمل کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں. گھر کا صحیح کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں اپنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور قربانی کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور یہ نہیں اللہ کو جب راضی انسان قربانی دیتا ہے تو اس کے انعام نہیں ہے. جب اس ٹاپک پہ ہم آ کے رمضان اللہ کو راضی کریں گے تو کتنا بڑا انعام ہے. اللہ کہتا ہے تو میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلی ہیں. بتائیں کسی عبادت میں، کر بتا دیں کسی عبادت میں اللہ نبی نہیں کہا کہ تو حج کرے گا کہ دو انگلی کے برابر میرے ساتھ، کہیں کا عمرہ کرے گا تو انگلی میرے ساتھ ہے، ساری رات جاگے گا تو یہ اتنا دو انگلی میرے ساتھ ہے، کہیں نہیں کہا. ایسی عبادت میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جس میں انسان کی زندگی لگتی ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین عطا و یاسین. بسم اللہ، اے میرے مولا، اے میرے رب، اے ہمارے خالق، اے پروردگار، ہم پہ رحم فرما یا اللہ، ہم پہ رحم فرما یا اللہ، ہم پہ رحم فرما یا کریم. یہ رمضان ہمارے لیے بہترین رمضان بنا دے یا اللہ، تم پہ کرم فرما، ہم سب کی بخشش فرما یا اللہ، اس مجلس کو قبول فرما. جو بھی جہاں بھی اس مجلس میں شامل ہیں میرا مولا، ان کی تمام معاملات کو پورا فرما، ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما، ان کے گھروں میں سکون نصیب فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما یا اللہ. ہمارے مریضوں کو شفا نصیب فرما، قلبی جسمانی شفا نصیب فرما، ہمارے گھروں کو جنت بنا، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا کریم. اپنے فضل و کرم سے ہمیں بار بار ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.